समय अपनी भीतर किसी प्रकार की कमी सताती है तो उसी समय तत्काल कामनाओं की उत्पत्ति होती है। भीतर भीतर नीरसता का रहना मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि वर्तमान की नीरसता से ही संसार की ओर व्यक्ति आकर्षित होता है। उसमें कई प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाओं से प्रेरित होकर वह वायु जगत में प्रवृत्त होता है और किसी न किसी प्रकार से वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों का आश्रय लेकर भीतर की नीरसता की पीड़ा को दबाना चाहता है, उससे छूटना चाहता है। इस प्रयास में उसे सफलता नहीं मिलती। ये बिल्कुल सच्ची बात है, हमारी आपकी अपनी जानी हुई बात है। कामनाओं की पूर्ति की चेष्टा में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, लेकिन अपने भीतर अभाव भरा है, नीरसता भरी है और वह अपने से सहन नहीं होती है, तो भगड़ा भगड़ा करके व्यक्ति वाहि जगत की ओर दौड़ता है। जीवन के जानने वाले अनुभवी जन सलाह देते हैं कि तुम्हारे भीतर जो कमी महसूस होती है वो बाहरी वस्तुओं की, व्यक्तियों और परिस्थितियों की सहायता से कभी दूर नहीं होगी। उसके लिए आवश्यक क्या है, तो उस अभाव को मिटाने के लिए आवश्यक यह है कि अपने ही में सहज आनंद स्वरूप, सहज ही रस स्वरूप जो विद्यमान है उस पर ध्यान रखो। उसकी आवश्यकता है तुमको, उससे अभिन्न होने का पुरुषार्थ करो। ये बताते हैं अपने लोगों की वर्तमान दशा क्या है, तो दशा तो यह है कि अविनाशी तत्वों की अभिव्यक्ति के बिना न अभाव मिटेगा न नीरसता मिटेगी, लेकिन भीतर भीतर अभाव और नीरसता से पीड़ित रहने पर भी हम पराश्रय और पराधीनता के द्वारा ही समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। अब आप अपनी ओर से सोच कर देखिए, अगर संसार की सहायता से हमारा यह काम होने वाला होता तो जितना भी समय आपने बिताया है उस समय के भीतर संसार की ओर से इच्छा पूर्ति का सामान हम लोगों को कभी मिला है कि नहीं मिला है? कभी नहीं मिला है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इच्छा पूर्ति का सामान संसार ने कभी दिया कि नहीं दिया? कभी कभी तो दिया है भाई, ठीक। अनेक बार हम लोगों की इच्छाएं संसार की सहायता से पूरी हुई है और उनकी पूर्ति का सुख लेने के बाद भी हम अपने को भीतर से अतृप्त ही अनुभव करते हैं। आदर्श जीवन की बात अब आगे करेंगे। वर्तमान की दशा को देखो तो उस दशा से आपको स्वयं ही अपने ही जीवन में यह बात दिखाई देगी। अनेक बार भूख लगने पर भूख की पीड़ा को मिटाने में संसार सहायक हुआ है कि नहीं हुआ है? अनेक बार नींद आने पर नींद का आराम लेने में सुरक्षित जगह देकर सोने का अवसर संसार ने दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। अनेक बार शरीरों में रोग बीमारी होने पर उस रोग के कष्ट से छूटने के लिए संसार ने औषधि की सहायता दी है। इतना काम तो किया ना संसार के करने का जो हिस्सा है उतना तो संसार ने किया। और कई बार बीमार हो होकर फिर शरीर ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है ना? मृत्यु का भय मिट गया क्या? नहीं मिटा। तो मृत्यु का भय मिटाने में संसार सहायक नहीं हो सका, लेकिन भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए, नींद के लिए सुरक्षित स्थान देने में, बाल बच्चेदार कहलाने में संसार ने सहायता की। और उस सहायता को लेकर के हम सब लोगों का कुछ विशेष उपकार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जैसे सांसारिक सुखों के लिए भूखे प्यासे हम पैदा हुए थे, आज भी उसी तरह से भूखे प्यासे हैं। और मैंने तो मानव जीवन का जो अध्ययन किया सूक्ष्म शरीर के आधार पर, तो मुझे अध्ययन में इस बात का पता चला कि इच्छाओं की पूर्ति का जितना अधिक अवसर आपको मिलेगा भीतर भीतर उतना ही इच्छा पूर्ति के सुख का दास आप बनते चले जाते हैं। सुख की दासता बढ़ती जाती है, सुख भोगने की शक्ति घटती जाती है। इच्छाओं की पूर्ति के अवसर निकल जाते हैं और इच्छा पूर्ति के सुख की तृष्णा भीतर भीतर बढ़ती चली जाती है। तो अर्थ क्या निकला? तो अर्थ यह निकला कि भीतर की नीरसता से पीड़ित होकर हम बाहर सरसता खोजने चले थे, सुख भोग की प्रवृत्तियों में जीवन का रस सूख गया, जीवन का रस खर्च हो गया, घट गया। जो अपने आप में बीज रूप में विद्यमान है उसमें से जो जीवनी शक्ति निरंतर प्रवाहित हो करके हम लोगों को मिलती रहती है, वो जीवनी शक्ति ही खर्च होती चली गई। किस बात में? इच्छाओं की पूर्ति के सुख को भोगने में। आगे चलकर दशा कैसी हो गई कि दशा ऐसी हो गई कि सुख भोगने की शक्ति अब नहीं है, लेकिन भोगने का लालच पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग है और भी ज्यादा प्रबल हो गई। तो लाभ हुआ कि हानि हुई? एक हानि हुई। 20 वर्ष की उम्र में जिस प्रकार से खाने का सुख ले सकते थे, 70-75 की उम्र में वो सुख है कि घट गया? तो शरीरों की दशा बदलती गई, दुर्बलताएं बढ़ती गई, असमर्थता बढ़ती गई और साथ साथ तृष्णा खत्म हुई नहीं, इच्छा खत्म हुई नहीं। तो नई उम्र में जीवन में जितना अच्छा लगता था, वृद्धावस्था की असमर्थता में उससे अधिक अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। इस बात को जानने के लिए ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? नहीं। एक एक दिन जो जीवन की घटनाएं घटित हो रही है, वो अपनी जिंदगी के पन्ने उनको, तो ये सब बातें उसमें साफ दिखाई देती हैं। एक बार एक मानसिक रोग की चिकित्सा के संबंध में विचार हो रहा था, तो विदेश के लोगों ने ऐसा सोचना आरंभ किया कि भारतवर्ष के लोग गरीब भी हैं, उनमें शिक्षा की भी कमी है, अनेक प्रकार के भौतिक सुखों से वे वंचित हैं, फिर भी वृद्धावस्था में इन्वोल्यूशनल मेलंकोलिया कहलाता है, एक रोग है। भारतवासी लोगों के जीवन में वह बीमारी कम दिखाई देती है। क्यों कम दिखाई देती है? इस पर विचार हो रहा था। बाहर के लोग हिंदुस्तान में देखने आए थे, जानने आए थे, पढ़ने आए थे कि क्या कारण है, कैसे ऐसा होता है। तो बहुत सी बातें सोची गईं, बहुत सी बातें देखी गईं। उन लोगों ने अपनी सीमित दृष्टि से, सत्य का ज्ञान तो है नहीं और अविनाशी जीवन का इस नाशवान शरीर के रहते रहते कोई ट्रेस मिल सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है उसकी, ऐसा वे सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने अध्ययन करके देखा और उसका जो उत्तर उनको मिला, जिसके संबंध में उन्होंने चर्चा की, वह हमारे आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सारांश मैं कहती हूँ, उनकी भाषा में नहीं बोल रही हूँ, अपनी भाषा में बोल रही हूँ। तो सारांश यह है कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जीवन को असफलता से बचाने का बड़ा प्रबंध किया गया है। क्या प्रबंध किया गया है? कि हर स्टेज पर जीवन की हर अवस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में ऐसा इंतजाम रखा गया है अपनी संस्कृति में कि जैसे जैसे आपकी शारीरिक दृष्टि से उम्र बढ़ती चली जाए वैसे वैसे आप नाशवान उपलब्धियों को छोड़ करके अविनाशी के पुरुषार्थ में लगते चले जाएंगे। ये बात पकड़ में आती है कि नाशवान की ओर से आपकी दृष्टि हटती जाएगी और शरीर जा रहा है नाश की ओर और शरीरधारी आप भाई बहन जा रहे हैं अविनाशी की ओर। अपनी संस्कृति में ऐसा विधान है, ऐसा है कि युवावस्था में विवाह के अवसर पर पति पत्नी के गांठ को बांधने का विधान किया जाता है। तो जहां गांठ बांधने का विधान है वहां दो चार दिनों के बाद ग्रंथि खोलने का विधान दिए। सारी जिंदगी बंधे रहो ऐसी संस्कृति आपकी नहीं है। राग निवृत्ति के लिए बाल बच्चेदार होने का राग है तो विवाह कर लो और विधि विधान से, धार्मिक अनुष्ठान से माता पिता बन जाओ और बाल बच्चों के पालन पोषण तक ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक धर्मानुष्ठान के द्वारा, माता पिता की सेवा के द्वारा, गुरुजनों के आदर के द्वारा, संतजनों की सेवा के द्वारा कमाई हुई संपत्ति को पवित्र करते हुए बाल बच्चों का पालन करते हुए जैसे ही बच्चे वयस्क होते हैं वैसे ही गृहस्थी की मान्यता अस्वीकार कर दो तो शक्ति घटेगी पीछे और तपस्वी बनेंगे आप पहले। ये राग रंग में दिल बहलाने के अवसर आपके सामने हैं। खा करके सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन पचाने की ताकत अपने में है लेकिन हमारे ऋषि मनीषियों ने इस बात को जाना था। क्या जाना था? कि व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से असमर्थ होगा इसके पहले उसके भीतर अविनाशी तत्वों का विकास हो जाना चाहिए कि वो इतना बलिष्ठ हो जाएगा कि नाशवान के नाश होने का उसको कोई दुख नहीं होगा। तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट बनाने वालों ने शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और जीवन का दर्शन तथा आस्तिकता सब मिला करके संस्कृति की रचना की। एक बार मैं दार्जिलिंग में थी, उन्हीं दिनों की बात है, पढ़ाई के दिनों की ही बात है, तो एक सज्जन कहने लगे कि आप लोग आजकल जो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं वह तो सब पश्चिमीय विद्वानों का प्रोडक्ट है, अर्थात उन्हीं लोगों ने खोज किया है, उन्हीं लोगों ने बताया है, तो उसको आप भारतीय मनोविज्ञान से मिलाते कैसे हैं, कैसे उसको मिलाएंगे, कैसे उसको अलग करेंगे। तो मैंने कहा कि आप अगर भारतीय हैं तो आपके जीने का जो तरीका है, मनुष्य के जीवन का जो ढंग बनाया है हमारे मनुष्यों ने, तो प्रतिदिन के दैनिक जीवन में ना उन्होंने मनोविज्ञान को छोड़ा, ना उन्होंने दर्शन को छोड़ा, और ना उन्होंने आस्तिकता को छोड़ा। सामान्य जीवन जो बनाया गया, आज रविवार है तो नमक नहीं खाएंगे और आज एकादशी है तो ऐसा नहीं करेंगे और अब इतनी उम्र हो गई तो गृहस्थ नहीं रहेंगे, तो गृहस्थ नहीं रहेंगे तो वनस्थ हो जाएंगे और वनस्थ हो गए तो अब सन्यासी हो जाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने एक ऐसा बढ़िया सांचा बना दिया कि जिस सांचे में ढलते हुए सही ढंग से मनुष्य जीवन बिताए तो अनेक प्रकार की अतृप्ति तथा वासनाओं से लेकर पैदा हुआ था, परंतु उसने जीवन के क्रम का अनुसरण किया तो मरने से पहले वो हर प्रकार से तृप्त होकर जाएगा। असमर्थता आएगी पीछे, नाशवान शक्तियों का नाश होगा पीछे और अविनाशी शक्तियों की अभिव्यक्ति से आनंदमय हो जाएंगे आप पहले। तो क्या इन्वोल्यूशनरी मिलन से लिया होगा? यहाँ नहीं होगा। यहाँ के वृद्ध जन नाशवान शरीरों की परवाह नहीं करते। यहाँ के वृद्ध जन किस बात में लगे होते हैं? वे कहते हैं कि बहुत दिन हो गए भाई, संसार का रंग तमाशा बहुत देख लिया, बहुत खा पी लिया, बहुत मौज कर लिया, अब क्या करो? तो भाई अब तो उसको याद करो जो सदा सदा का साथी है, अब तो उसको याद करो जो सब कुछ करने वाला है, अब तो उसको याद करो जो आनंद स्वरूप है, जो शांति स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, अब उसको याद करो। तो जीवन के क्रम में हम सभी भाई बहनों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब से अपने को होश आवे कि मैं मनुष्य हूँ, उसी समय से इस दिशा में हम लोगों को लग जाना चाहिए कि हम असत्य के संग पर आश्रित रहना छोड़कर अविनाशी के आधार पर जीवित रहना पसंद करें। वो संपत्ति के सहारे जीना छोड़ करके सत्य के सहारे जीना आरंभ करें। संगी साथी कुटुंबी जनों को अनुकूल बनाए रखने की चिंता छोड़कर सत्य के आश्रित रहना पसंद करें, परमात्मा के आश्रित रहना पसंद करें। यह बात हमारे जीने की शैली में मनीषियों ने हर प्रकार से भर दिया है। और मैं जब अपनी छात्राओं को मनोविज्ञान और जीने की कला ये शब्द पढ़ाती थी तो उनको इस बात की याद भी दिला देती थी। सिलेबस जितना पूरा करना है उतना तो करा दिया, ठीक है, इतना तुम इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ लो। और आखिर में 10-20 लेक्चर बचा के मैं रख लेती थी कि भाई बढ़िया उत्तम जीवन सफलता पूर्वक जीने की कला भी सीख के जाओ। तो मेरे ध्यान में आ जाता, देखो हमारे ऋषियों मनीषियों ने मानव के जीवन को सुंदर कला सिखाने वालों ने जीवन को विभिन्न भागों में बांट दिया। सारी जिंदगी परिश्रम के लिए नहीं है, सारी जिंदगी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाने के लिए नहीं है। अगर गृहस्थ बनना है तो इतना बढ़िया गृहस्थ बनो कि तुम्हारे भीतर गृहस्थ बनने की वासना खत्म हो जाए। बाल बच्चे पैदा करो तो इतना बढ़िया माता पिता बनो कि तुम्हारे भीतर से माँ बाप बनने का राग खत्म हो जाए।
तो बाल बच्चों के लिए अगर माता पिता बनोगे तो मुक्त हो जाओगे, और अपनी खुराक बनाने के लिए बाल बच्चों को पैदा करोगे तो दासता में फंस जाओगे। अब माँ बाप का हाल देखो, अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को चलाने की चेष्टा करने वाले माँ बाप हार जाते हैं, और बच्चों के कल्याण की दृष्टि से अपना सब कुछ उनकी सेवा में लगाने वाले माँ बाप जीत जाते हैं। समझ में आता है? तो जो गृहस्थ बनता है संपूर्ण जीवन को साधनमय बनाने के लिए उसको इन्वोल्यूशनल मेलांकोलिया का रोग नहीं होता। उस रोग का लक्षण क्या है बहुत लंबा चौड़ा विवरण है, आपको वो पढ़ाने में बैठी हूँ मैं, एक दो बात छोटी बता दूँ। क्या हो गया कि इंद्रियों की शक्तियाँ घटती चली जा रही हैं, तो अब बाहर की वस्तुओं का सुख लेने में जो मन बहलाव हो रहा था उसका दरवाजा बंद हो रहा है। ये ठीक है ना? तो इंद्रियों में लुप्तता से प्रेरित होकर के वस्तुओं के संयोग का सुख लेने में अपने को थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा था, वो सब जब घटने लगा तो भीतर की नीरसता थोड़ी और बढ़ गई। अब युवावस्था में जब कमाने की सामर्थ्य थी तो परिवार के सब लोग आपको अटेंशन देते थे, ध्यान देते थे ना, अरे मालिक आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं, उनका सामान ठीक कर दो, उनका बिस्तर ठीक कर दो, उनकी नाश्ता ठीक कर दो, उनका खाना ठीक कर दो, जिस प्रकार से वो खुश रहे तो करो। तो बाल बच्चे स्त्री माता पिता भाई बंधु नौकर चाकर कर्मचारी संगी साथी मित्र मंडली सब आपकी खातिरदारी में लगे थे। अब कमाना आपका खत्म हो गया, सरकार ने फेयरवेल दे दिया, शेयर वापस ले लिया, आपका समय बीत गया, आप जाइए। तो आगे पीछे चौकीदार चपरासी प्यून घूमते थे, उन्होंने सलाम कर लिया, बाबू अब जा रहे हैं, हो गया। अब शाम शौकत में जो अच्छा अच्छा लग रहा था वो सब छूट गया। बाल बच्चे जिनको पैदा करके आपने बड़े किए उन्होंने सब बार बार संभाल करके अपने हाथ में ले लिया, बाबू जी अब ठीक है, अब आप राम राम जपी है, तो वो अधिकार भी गया। अब देखो भीतर से आदमी कितना अधीर होता चला जा रहा है। तो जब शरीर की असमर्थता बढ़ गई, जब अधिक सहायता करने वालों की जरूरत पड़ी तो सब सहायता करने वाले बिखर गए। नई उम्र में भूखे रहने की ताकत थी तो दो चार घंटे भूख भी आप काट सकते थे, लेकिन उस समय तो आपके मुख देखने वाले बहुत लोग खड़े थे, कभी इनको भूख लगती है कभी इनके आगे रखा जाए। वृद्धावस्था आ गई तो भूख सहने की ताकत घट गई, और फिर इस समय पर आपको भोजन देने वालों का ध्यान भी हट गया। मैंने ये हालत देखी है, मेरे कलेजे में मेरे दिल में इसका बड़ा एक दर्द रह गया है, मैंने देखा है। माता जी का देहांत जल्दी हो गया था, भाई लोगों की शादियां हो गई थी, भौजाइयां घर में भरी थी, खूब थे, तीन भाई बड़े तीन भाई उनसे छोटे, छह भाइयों का परिवार घर में भरा था। वृद्धावस्था में पिताजी भोजन के समय पर अपने पात्र में जल भर के नियम था उनका, सब्जी में स्नान करेंगे, बर्तन साफ करेंगे, साफ जल भर के ले आएंगे रखेंगे, नाश्ता जलपान इधर उधर की चीज जिंदगी में कभी नहीं खाई उन्होंने, एक समय पर ठीक समय पर भोजन करते थे। कितनी बार मैं देखती थी कि भोजन के लिए लोटे में जल भर के तैयार, वृद्धावस्था में भूख कितनी थी,
और बड़ी भारी कहते हैं बाबू जी अभी थोड़ी देर
चले जाएंगे वापस।
ऐसी चोट लगती थी दिल में, क्योंकि मैंने दादी को देखा था, माँ को देखा था कि वे लोग एकदम से बाबू जी का मुख देखती रहती थी, और किसी दिन उन्होंने जरा सा कम खाया तो दादी तो माँ की मुसीबत कर देती थी कि तुमने ठीक रसोई नहीं बनाई, आ गए फिर उठ गए, आज उसकी थाली में रोटी बच के हो गई। रसोई बनाने वाली माँ और चाची की मुसीबत हो जाती, दादी इतना हैरान कर देती उन लोगों को, दूसरे समय उनको निकाल देती रसोई में से, हटो तुम लोग, मैं बनाऊंगी, मैं खिलाऊंगी। सवेरे उसकी थाली में रोटी बच क्यों गई, आफत हो जाती आंगन में। उनको मैंने देखा बार बार लोटा में जल भर के लेके आंगन में आ रहे हैं, और बहू लोग कहती हैं बाबू जी अभी थोड़ी देर है, लौट के वापस जा रहे हैं। तो वृद्धावस्था में भूख अति तीव्र हो गई और समय पर भोजन देने वालों का ध्यान भटक गया, तो असमर्थता बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई, सहारे सब एक एक करके छूट गए। तो क्या होता है कि ऐसी हालत में व्यक्ति भीतर भीतर निराधार होता जाता है। तो हमारे आचार्य जो हम लोगों को पढ़ाते, वे कहते कि संसार जब इस प्रकार से हमारे ऊपर से अपना ध्यान हटा लेता है तो हमको लगता है कि हाय हाय, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं पाया, लॉस लॉस फील करता है व्यक्ति। यही सिम्टम है इन्वोल्यूशनल मेलंकोलिया का, हाय मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पाया। तो उस समय मैं पढ़ती थी जब, तब तो बड़ी दया आती थी, अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि कितना अच्छा चांस है हम लोगों के लिए, कितना अच्छा अवसर है कि संसार मुझको छोड़ेगा उसके पहले मैं संसार को छोड़ दूं। जी, और आप देखिए अपने जीवन में कि जो माता पिता ठीक समय पर सामर्थ्य के रहते रहते साधना में लग जाते हैं, सत्संग में लग जाते हैं, भजन में लग जाते हैं, परोपकार के सामाजिक कार्य में लग जाते हैं, उनके बाल बच्चों का ध्यान आपकी ओर अधिक आता है कि कम आता है? अधिक आता है। पूजा करने आएंगे, आशीर्वाद लेने आएंगे, सलाह लेने आएंगे, आप कहेंगे कि भैया जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो, हमको छोड़ दो? तो नहीं बाबू जी, आपकी सलाह के बिना हम कैसे करेंगे? तो क्या हो रहा है घर में, आप कहेंगे नहीं नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो अब सत्संग में है, हम तो अपने कल्याण में लगे हैं, जाओ तुम लोग करो सांसारिक काम। तो पोता कहेगा कि नहीं नहीं बाबा जी, जब तक आएंगे नहीं मैं तो घोड़ा नहीं चढ़ूंगा, मैं तो बाल्टी नहीं चढ़ूंगा। तो आप जब अपने भीतर आसक्ति लेकर बैठेंगे, आप जब अपने भीतर बाल बच्चों पर अधिकार जमा कर बैठेंगे, तो भगवान की का कितना सुंदर विधान है कि संसार आपको ठुकराता है। बड़ा हितचिंतक है संसार, बड़े हितचिंतक हैं वे बाल बच्चे जो आसक्ति में बंधे हुए माँ बाप को ठुकरा करके भगा देते हैं। जाओ जाओ जाओ, तुमसे अब कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे दिन बीत गए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये ठोकरे भी अगर मुझे सचेत न बनाए तो मेरा मानव होना तो कहाँ गया काम क्या। इसलिए मैं बिल्कुल ही आपको स्थूल और वैज्ञानिक के रहस्य बताती हूँ जीवन का, कि आप अगर भीतर के अभाव को बाहर की सहायता से भरने की चेष्टा में रहेंगे तो मेलंकोलिया के रोगी बनना ही पड़ेगा। हाय मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पाया, इस प्रकार की फीलिंग में पीड़ा में तड़प के प्राण छोड़ना पड़ेगा। और आपने समय के रहते रहते सचेत हो करके थूकने वाला छोड़ेगा मुझको पीछे, ये बहादुरी आप करेंगे तो सम्मान भी सुरक्षित रहेगा और जैसे ही असत का सहारा छोड़ा नहीं गया कि सत्य की अभिव्यक्ति में कृतकृत्य हो जाता है व्यक्ति, अपनी आंतरिक शांति की अभिव्यक्ति में आनंदित हो जाता है व्यक्ति। अभी यही की बात है, इसी साल की सत्संगी एक महिला मुझको मिली, वो सत्य सत्संग की चर्चा होने लगी तो कहने लगी कि हमारे जान पहचान की एक लड़की है, हमारे नगर में रहती है, तो वो सत्संग में आती थी, संतजनों की वाणी उसको अच्छी लगी तो वो लग गई भजन में, परमात्मा की लगन उसके में लग गई। अब जब थोड़ी बड़ी हुई 18-20 वर्ष की, शादी का इंतजाम होने लगा तो माता पिता तो इस धन में थे कि इसकी शादी कर देंगे, समय हो गया है, और लड़की सत्संग में थी तो एक दिन सत्संग की चर्चा सुनते सुनते प्रभु की महिमा, प्रभु का प्यार, सत्य की विशेषता महत्ता संत को ही बता रहे होंगे, लड़की बैठ के सुन रही थी, सुनते सुनते उसको बड़ा आनंद आ गया, उसको समाधि लग गई प्रभु की महिमा को सुनते सुनते। तो सत्संग का कार्यक्रम खत्म हो गया और समाधि उसकी लगभग 6 घंटे के बाद की थी। वो जहाँ बैठी थी वहाँ बैठी रही और लोग सब उठ गए, वो बैठी रही समाधि में आनंद में। 5-6 घंटे हो गए तब उसकी समाधि टूटी, बड़े आनंद में थी, बहुत मस्ती में थी। फिर घर के लोग सब आसपास उसके बैठे ही थे, यानी लड़की सत्संग में गई थी तो और लोग भी गए थे, समाधि लग गई उसकी, सब लोग चले गए, उसकी माँ और घर वाले लोग कुछ बैठे रह गए, बहुत अच्छा है, आनंद में है, उसको रहने दो, जब इसकी समाधि खुलेगी तो ले चलेंगे। तो जब उसकी समाधि खुली तो इतने आनंद में थी वो लड़की कि न उसका चलने का मन हो, न घर जाने का मन हो, न बात करने का मन हो, अपने अंतर के रस में खूब भरी हुई थी। तो कैसे ले जाए उसको, उठे ही नहीं, चले ही नहीं। फिर रिक्शे ले आए घर वाले लोग और बहुत कह सुन करके उसको उठा करके बैठाया, ले आए घर, घर आ गई अपनी उसी आनंद की मस्ती में है, खाए पिए कुछ नहीं, बातचीत कुछ न करे। जब थोड़ी देर के बाद और कुछ समय बीता और जब थोड़ा और स्वाभाविक हुई तब कहने लगी कि आहा, भगवान के भजन में इतना आनंद है, संत के संग में इतना आनंद है, सत्संग इतना बढ़िया है, अब इसके आगे मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो उसने एकदम जोर डाल करके इनकार करके विवाह संबंध बनाने का सब कार्यक्रम बंद करवा दिया। नहीं नहीं नहीं, इससे बढ़िया और दूसरा कोई जीवन हो ही नहीं सकता, अपने में इतना व्यस्त है। अपने में इतना आनंद है, अब इससे आगे और क्या चाहिए, और किस बात के लिए संसार से संबंध बनाओगे, और क्या है संसार के पास। अपने भीतर जो अविनाशी तत्व विद्यमान है उसके प्रकट हो जाने में जो जीवन है वो संसार से संपर्क बनाने में है नहीं, कहीं नहीं है, कभी नहीं मिला किसी को, कभी नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब अभी भी देखो, अब से भी सोचो तो वो तो 18-20 वर्ष की लड़की, अभी उसने ये जीवन आरंभ ही किया है और इसी काल में सत्संग के प्रभाव से ही उसके अंतर में विद्यमान सत्य की अभिव्यक्ति से इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया कि सचमुच जीवन में जो अनमोल रस है वो संसार की धूल फांकने में कम है। तो कितने जन्म हम लोग गंवा चुके और अब भी इस समय जो समय हमारा बीत रहा है उसी समय में हमको कितना सावधान होना चाहिए, किस तरह से अपनी दृष्टि को बदल देनी चाहिए, किस तरह से अपने ही में विद्यमान उस वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति में प्राण पंखे लग जाना चाहिए कि भाई असमर्थता की घड़ी आवेगी पीछे और अनंत सामर्थ्यवान से अभिन्न होकर के सदा सदा के लिए कृतकृत्य हो जाएंगे। पहले अब सोच करके देखो कि उस लड़की की युवावस्था खत्म हो जाएगी, वृद्धावस्था आएगी तो उसकी कोई चिंता उसको होगी, उसका कोई दुख उसको व्यापेगा? सत्य का आनंद जो है, सत्य का आश्रय जो है, अविनाशी परमात्मा की शरणागति में निश्चिंतता निर्भयता जो है, उनकी प्रीति में अनंत मधुर रस जो है, उसकी तुलना संसार की किसी स्थूल वस्तुओं के संयोग में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो कितने दुख की बात है कि हम लोग यहाँ बैठ करके चर्चा करें सत्य की और जीवन में महिमा रखें असत्य की। कितने दुख की बात भाई, हम लोग चर्चा करने बैठे हैं सत्य की तो जीवन में महिमा भी सत्य की रखनी चाहिए, चर्चा करने बैठे हैं भगवान की तो जीवन में महिमा भी भगवान की रखनी चाहिए। मनुष्य होने के नाते इज्जत पूर्वक सम्मान पूर्वक दुनिया में जीवन बिताना चाहते हैं तो सचमुच अपने में मनुष्यता भी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? जो सत्संग के प्रकाश में रहकर अपने भीतर के अभाव को विश्वम्भर की मधुरता से भरना पसंद कर लेता है उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। फिर से दोहराती हूँ मैं इस वाक्य को, इस संसार में रहते हुए भीतर भीतर जो अभाव सताता है हम लोगों को, नीरसता सताती है, उसको अगर विश्वम्भर की प्रियता से भरना चाहते हैं तो मानव जीवन सफल हो गया। अगर हीरा मोती से भरना चाहते हो तो चौपट हो गया। अगर ईंट पत्थर के बनाए हुए बड़े महल से अभाव मिटाना चाहते हो तो गया गया ना। तो जड़ता की महिमा स्वीकार करूंगी मैं तो भीतर में जड़ता भर जाएगी, अनंत परमात्मा की महिमा स्वीकार करूंगी मैं तो उनकी विभूतियां मेरे भीतर भर जाएंगी। तो ईश्वरीय विभूतियों से मनुष्य का अभाव मिटता है, परमात्मा के मधुर प्रेम रस से मनुष्य का हृदय भरता है, ना कि सोना चांदी हीरा मोती से भरेगा। आप जड़ नहीं है कि जड़ता की सहायता से काम चलेगा, समझ में आता है? आप जड़ होते तो जड़ता की सहायता से काम चल जाता, आप जड़ नहीं है। आपको चेतन स्वरूप ने अपना ही प्रतिरूप बनाया, आपको परमात्मा ने अपनी ही धातु से रचा, इसलिए आप चेतन स्वरूप होने के कारण नाशवान शरीर को लेकर नाशवान जगत में रहते हुए भी उसके चिंतन में लगे रहते हैं, उसकी खोज में लगे रहते हैं, उससे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। तो यह प्रोग्राम हमारा कि हम सबसे महत्व को अपने में से हटा देंगे, परमात्मा के महत्व को स्वीकार करके सदा सदा के लिए उनका प्रेम पात्र हो जाएंगे, यह प्रोग्राम सब पूरा करेंगे हम लोग। अभी करना चाहिए न? अभी करना चाहिए? ठीक है, ऐसा स्वीकार करके उठो तो पूरा हो ही जाएगा। शांति।